ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఆజ్ కా బహుత్ హీ సుందర్ విషయ్. జిస్కీ ఓర్ హమ్ ఆగే బఢ్తే హై. పహలే తో యే సోచనే కీ బాత్ హై కి హమ్ లోగ్ సన్యాసీ తో హై నహీ. ఔర్ బిగర్ కామ్ ధందే తో చలేగా నహీ. హమారి సాథ్ వ్యక్తిగత జిమ్మేవారియాం, పారివారిక జిమ్మేవారియాం, వ్యవసాయిక జిమ్మేవారియాం, సామాజిక జిమ్మేవారియాం, బహుత్ సారి జిమ్మేవారియోం కే బీచ్ మనుష్య జీవన్ హై. और फिर ऐसे सांसारिक व्यवहारिक जीवन में शांति के विषय पर सोचना वो थोड़ा एकदम से तो अजीब सा लगता है ना, क्योंकि शांति माना कुछ लोग ऐसा समझते कि शांति माना कुछ भी नहीं करने का, శాంతి మానా సన్యాసి బన్ జానే కా. పరంతు యే వాస్తవిక డెఫినేషన్ నహీ హై. సబ్ కుచ్ కర్తే హువే హమారీ మన్ కీ స్థితి, హమారీ మన్ కీ స్టెబిలిటీ బనీ రహే. हम काम एंड क्वाइट रह सके, हमारा टेम्परमेंट बड़ा मजे का रहे, इसको शांति तो कहते हैं. लोग शांति को अप्रिशिएट भी करते हैं, शांति चाहते भी हैं, लेकिन ये शांति नाम की चिड़िया कौन सी है और वो शांति हमारे जीवन में कैसे आए, ये एक प्रश्नार्थ है. आप सभी का प्रश्न है कि जो जानते हैं कि हमें मालूम है शांति क्या है और हम बिल्कुल शांति की जीवन जी रहे हैं, वेरी हैप्पी एंड वेरी पीसफुल लाइफ हम जी रहे हैं, वो जरा हाथ उठाएं. नहीं उठा रहे हैं. क्यों? आज की लाइफ में हरी वरी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन ये सब हैं. अभी ये सभी में शांति की बात सोचना, ये तो सोचने से बाहर की बात है, है ना? तो ऐसी परिस्थिति क्यों है? मनुष्य जीवन कुदरत ने इसलिए दिया कि आप अशांति में रहो, आप दुखी रहो, आप परेशान रहो, इसलिए तो कुदरत ने ये जीवन नहीं दिया ना. तो क्या जब जीवन दिया होगा, असल में जब जीवन मिला होगा हमको, क्योंकि हम तो सदियों से, हजारों वर्षों से इस वर्ल्ड स्टेज पर ये साइकिल चल रही है, तो क्या पहले से ही ऐसा ही होगा क्या? कि पहले कुछ अच्छा था, सोचने की बात है। ये जो गायन है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बखेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ एक एक राधे और एक एक श्याम, ऐसे दिव्य व्यक्तित्व का वर्णन था, तो वो भी कोई जमाना होगा ने कि जब मनुष्य पूर्ण खुशी शांति में रहते थे। कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमारे पास कुदरत ने बुद्धि बल दिया है, और बुद्धि के बल से, समझदारी के आधार पर हम कोई भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, और हम जैसा सोचे समझे ऐसी क्रिएशन बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। आज कुछ एक बातों के ऊपर हम सोच करके रास्ता निकालेंगे कि ये शांति को हम अपने जीवन में एंट्री कैसे दे सकते हैं। कुछ एक ऐसी आदतें होती हैं, सब में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मनुष्य वो एक दूसरों के संग में रहने से जैसा संग वैसा रंग उसका बन जाता है। तो अभी जो कुछ साइकोलॉजी बन गई है, वो साइकोलॉजी ऐसी बन गई है कि लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसे ही बोलना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो इस दुनिया में जीना मुश्किल है, है ना? क्रोध नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? पहली ही गलत मान्यता यह है कि क्रोध नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्रोध तो करना ही पड़ेगा, सच्ची बात है। जो कहते क्रोध तो करना ही पड़े, वो हाथ उठाएं। देखो कोई भी नहीं उठा रहा है, अभी तो कोई नहीं उठा रहे। तो कुछ बातें हैं, अगर आज उस बातों को समझ करके उसकी जगह जो रिप्लेसमेंट करना है वो आप करेंगे, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूं कि आप अपने जीवन में शांति को इस तरह ला सकेंगे कि आप एक शांति का देवता बन जाएंगे, आप एक शांति का फरिश्ता बन जाएंगे, आप एक शांति का अवतार बन जाएंगे। इसी जीवन में, इसी शरीर में बातें बहुत सिंपल हैं। अभी सुनते हुए समझने और स्वीकार करने की थोड़ी साइकोलॉजी बना लेना, ठीक है? हम सभी के अंदर एक आदत है, हर बात पर रिएक्ट होना, छोटी से छोटी बात पर रिएक्ट होना, बच्चे के बिहेवियर पर रिएक्ट होना, वाइफ के बिहेवियर पर रिएक्ट होना, फ्रेंड के बिहेवियर पर रिएक्ट होना। ये बात सही है तो जरा हाथ उठाओ। अच्छा, रिएक्ट होना जरूरी है? जो कहते हैं रिएक्ट तो होना ही चाहिए ना, रिएक्ट नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? जो कहते रिएक्ट होना जरूरी है वो हाथ उठाए। दो तीन को लगता है रिएक्ट होना चाहिए, ठीक है आपसे बाद में पूछेंगे। कोई गुस्सा कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई आपका विरोध कर रहा है। अब ये जो भी कुछ हो रहा है, जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपका रिएक्शन चाहता है, वो तो मजबूर है अपने नेचर से, इसीलिए वो रिएक्ट कर रहा है। लेकिन उसके सामने रिएक्ट होना आवश्यक नहीं है। उस समय क्या सोचना चाहिए कि दुनिया का हर इंसान अपनी समझ और शक्ति के प्रमाण चल रहा है, अपने सर्कमस्टेंसेस के प्रमाण चल रहा है। एक पागल अगर आपके आगे पागलपन करता है, आपको मालूम है ये पागल है, उसके सामने आप रिएक्ट करेंगे? उस समय आपकी बुद्धि जवाब देती कि जाने दो, पागल है, बेचारे को कुछ समझ नहीं है। अगर कोई ब्लाइंड द पीपल चलते चलते आपके साथ टकरा जाए, तो आप उसका दोष निकालेंगे कि अपना? किसका निकालेंगे? अपना निकालेंगे ना, वो तो बेचारा अंधा है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है, और आप देखते हुए टकरा रहे हो। ठीक इसी तरह इस समझ को अडॉप्ट करो, दुनिया की हर व्यक्ति को अपनी लिमिटेशंस हैं, समझ की, शक्ति की, अंडरस्टैंडिंग की। वो कैसा भी बिहेवियर करे, पर मुझे क्या करना है, मुझे इस रियलिटी को समझना है कि हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, अपनी बुद्धि शक्ति है, अपनी कार्य शक्ति है, अपनी मर्यादाएं हैं, वो मुझे एक्सेप्ट करना है। जो है जैसा है वैसा मुझे उनको स्वीकार करना है। ठीक है, ये इनका ऐसा रोल है, उनका ऐसा पार्ट है, इससे मेरा कोई मकसद नहीं है। मुझे अपना रिमोट दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए। आप रिएक्ट होते हो, इट मीन्स कि आपने उनको रिमोट दिया। तो रिएक्ट के बदले अदर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका मन अशांत नहीं होगा, आप रिएक्ट नहीं होंगे, और आप शांति से उस बात को समा पाएंगे। लगता है ये मास्टर की ठीक है? लगता है? लगता है तो हाथ उठाओ। ठीक है, ये नोट करना पड़ेगा, फिर उस पर अपने को अच्छी तरह से समझा करके चलाना पड़ेगा। तो नो रिएक्शन, ये पक्का कर लो कि कोई कुछ भी कर ले, मुझे शांत रहना है और सिचुएशन को समझ करके पावर ऑफ एक्सेप्टेंस को यूज करना है, स्वीकार भाव। उससे और भी फायदा क्या होगा, वो सामने वाली व्यक्ति को आपके तरफ से कम रिलीफ और रिलैक्स मिलेगा और उनको ये प्रायश्चित होगा कि मैंने तो गलत किया, फिर मेरी गलती के सामने भी ये तो कुछ नहीं कर रही। एक बार ऐसा हुआ, हमारे यहां बहुत रहते हैं, एक भाई ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और उस गलती को कोई भी मतलब समा नहीं सकता या क्षमा नहीं कर सकता, ऐसी वो गलती थी। मेरे तक समाचार आया, मुझे मालूम चला, उसको भी मालूम चला, मुझे मालूम चला है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, उनसे सहा नहीं गया। चौथे दिन वो आके मेरे चरणों में गिरा, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। मैंने कहा क्या हुआ भैया तेरे को? बोला नहीं दीदी, मैंने नहीं समझा था कि आप इतना भी माफ कर सकती हो, आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा, आपने मुझे अपने हाव भाव से भी ये महसूस नहीं करने दिया कि मैंने कुछ गलती की है। उसके जीवन में इतना सुधार आया। तो हमारा रिएक्ट नहीं होना और सामने वाली व्यक्ति को एक्सेप्ट करना, वो उस आत्मा के परिवर्तन के लिए भी एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी और हमारा मन शांत रहेगा। दूसरा है रिजेक्शन। बहुत नॉर्मल ये सब बातें हो गई है, मुझे ये भाई से नहीं बनेगा, मुझे ये बहन से नहीं बनेगा, मेरे को ये कमरा सेट नहीं होगा, मेरे को ये खाना सेट नहीं होगा, मेरे को ये जॉब अच्छी नहीं लगती है, मेरे को इनके साथ काम करना अच्छा नहीं लगता है। रिजेक्शन होता है ना, होता है ना जीवन के अंदर, ये होता है। अब आप सोच लो कि आप व्यक्तियों को रिजेक्ट करेंगे, काम को रिजेक्ट करेंगे, स्थान को रिजेक्ट करेंगे, आपको कौन सिलेक्ट करेगा? और लोगों की तरफ से आपके प्रति रिजेक्शन बढ़ता जाएगा, उससे आप लोनली होते जाएंगे, आपको अपनी लाइफ अच्छी नहीं लगेगी। ये होता है, रिजेक्शन होता है, चाहते नहीं चाहते भी होता है। कोई का संस्कार ऐसा होता है, बिहेवियर ऐसा होता है, समझाने पर समझते नहीं है, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो बहुत कुछ होने पर आप रिजेक्ट करेंगे। भगवान इसकी दुनिया से नहीं रिजेक्ट करता है, वो तो रहेगा इसी दुनिया में। हमारे रिजेक्शन करने से क्या होगा, बजाय के रिजेक्शन क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए। कैसे सिलेक्शन? हर व्यक्ति के अंदर कम से कम कोई एक विशेषता है, कोई एक गुण है। आप अपनी परख शक्ति से उस गुण को, उस विशेषता को परख लो और उसको परख करके क्या करो, सिलेक्ट करो। आज हर एक कार्य हर कोई व्यक्ति नहीं करती, हर ऑफिस में प्यून चाहिए, क्लार्क चाहिए, ऑफिसर चाहिए, सीओ चाहिए, जैसे जैसे योग्यता वैसे होता है। तो ये इतनी बड़ी यूनिवर्स में भगवान ने हर इंसान को काम के लिए रखा है। कुदरत की कारीगरी को, कुदरत के सिलेक्शन को मैं कैसे रिजेक्ट कर सकती हूं? नो रिजेक्शन. हो सकता है हम अपने अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए तिरस्कार भाव नहीं रखे, ये हो सकता है तो हाथ उठाओ. जरी ताकत से उठाओ ने, मजबूरी मजबूरी नहीं उठाओ, ताकत से उठाओ. निश्चित कर लो आज के बाद इस दिल में दिमाग में संसार की कोई भी व्यक्ति कैसी भी व्यक्ति के प्रति रिजेक्शन का भाव नहीं उठेगा. हाँ, कर सको तो सिलेक्शन करो, नहीं कर सको तो कीप मम, पर रिजेक्ट नहीं करो. फिर देखना आपका मन शांत होगा. फिर तीसरी चीज, इस समय की जो भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, हजार से ज्यादा भाषाएं हैं, परंतु लैंग्वेज ऑफ पीस क्या होती है? इस समय जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज ऑफ ब्लेम है. परिवार में एक दो के बीच, ऑफिस में, सब जगह कैसे कहेंगे आपने ऐसा किया? मुझे मालूम है आप हमेशा काम बिगाड़ते हो, आप कभी ठीक से नहीं करोगे. बोलते हैं ना ऐसे? बोलते हैं, नहीं बोलते? हमारे नियरेस्ट रहने वाले, उनको तो कितना प्यार देना चाहिए. एक पति पत्नी सारी जिंदगी एक दूसरों के लिए रह रहे हैं, परंतु कभी एक दो को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. वाह क्या बात है. मैं तो हर दिन कितने केस सुन रही हूं आजकल, डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स. और हुआ क्या, छोटी बात में तू तेरी मां के घर चली जा, फिनिश, काम बिगड़ गया. लैंग्वेज ऑफ ब्लेम. शांति की भाषा कौन सी होती है? ब्लेसिंग की भाषा होती है. हम हर कोई से बात करें, बड़े प्यार से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें, अप्रिशिएशन करें, अगर आपको स्वयं शांत बनना हो, आपके द्वारा दूसरों को शांति देनी हो, तो आप ब्लेसिंग्स की भाषा सीख लो. ब्लेसिंग की भाषा क्या होती है? आप बहुत अच्छे हो, आपका कल्याण हो, आपकी भावनाएं पूर्ण हो जाए, आपको परमात्मा का साथ मिल जाए, आपकी बीमारी दूर हो जाए, आपके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं. ये है लैंग्वेज ऑफ ब्लेसिंग. जिस लैंग्वेज में प्रेम हो, सम्मान हो, सौहार्द हो, ऐसी भाषा बोले एक दूसरों के रिलेशन में. जिनको ऐसी भाषा बोलनी आती है जरा हाथ उठाएं. ये लैंग्वेज जिन्होंने सीखी है अच्छी तरह जीवन में, डे टू डे लाइफ में, हाँ, ऐसे नहीं दो अच्छे लोगों के लिए तो आप बोलते हो, लेकिन घर में अपना एक भाई है वो थोड़ा पागल है, उसको भी इतना प्यार से ट्रीट करते हो? लैंग्वेज ऑफ ब्लेसिंग, भूल से भी किसी को ब्लेम नहीं करना है। देखो ये सारी बातें हमारी मन की शांति को खत्म करने वाली थी, जिसने हमारी मन की शांति को खत्म किया है। तो आज से हम ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि हम शुभ भावना वाली, शुभकामना वाली भाषा बोलेंगे, आशीर्वाद की भाषा बोलेंगे। वो बोलना नहीं आएगा तो चुप रहेंगे, परंतु ब्लेम की भाषा कभी नहीं बोलेंगे। देखो ये टाइम ऐसा है, किसी को शिक्षा सावधानी पसंद नहीं है, किसी को आप करेक्शन देने जाएंगे वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। अप्रिशिएशन इस युग की इतनी अच्छी मेडिसिन है हेल्दी रहने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए। मैं एक बार दुबई यूथ के प्रोग्राम के लिए गई थी, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, तो सारे रिपोर्टर्स ने मिलकर निश्चित किया होगा व्हाटएवर, तो सवाल ये किया, एक साथ तीन चार बोले, तो मैंने सोचा इन्होंने मिलकर निश्चित किया है कि एक शब्द में सुनाइए यूथ को क्या चाहिए। मैंने कहा अप्रिशिएशन, तो वो भी खुश हो गए। महिमा खुशामत तो खुदा को भी प्यारी लगती है, इंसान को तो जरूर प्यारी लगेगी। हम अप्रिशिएशन करना सीखें, कार्य को अप्रिशिएट करें, विशेषताओं को अप्रिशिएट, फिर आप देखो वो जादू कैसा काम करता है। आप करके तो देखना, अपने घर में, घर से चालू करना, वाइफ को अप्रिशिएट करो, बच्चे को, और दिल से करना है, ऐसे नहीं नाटक करने लिए नहीं, दिल से अप्रिशिएट करना उनकी विशेषता को, फिर देखो क्या उससे मिरेकल होता है, क्या जादू होता है। तो ये तीसरी लैंग्वेज ऑफ ब्लेम है, उसको करेक्ट करना है। फिर चौथी बात है, हम अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं, और बहुत एडवांस समझने के कारण हर बात को पहले कैसे सोचते हैं, डाउट से। अगर ये सोचा है पर ऐसा नहीं हुआ तो, सबका सहयोग नहीं मिला तो, सर्कमस्टेंसेस ने अलाउ नहीं किया तो, नेगेटिव मानसिकता से सोचना, इवन रिलेशंस के अंदर, पता नहीं ये मेरे साथ सच्चाई से चल रही है, पता नहीं ये मेरे को सब कुछ सच सच बताती होगी, है ना। और आजकल की फिल्म देख करके, तो ये नेचर बनना ही है आपका, संशय का, शंका का, नेगेटिविटी का। अब आप सोचो ये सोचे से कभी मन को शांति मिल सकती है? नेगेटिव थिंकिंग, चिंता, भय, परेशानी, डाउट्स, सब कुछ क्रिएट करेगा नेगेटिव थिंकिंग। उसकी जगह अगर पॉजिटिव एटीट्यूड बना ले, हर बात के अंदर हम पॉजिटिव रीति सोचे। गीता में भी कहा है भगवान ने अर्जुन को, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। अगर नेगेटिव थिंकिंग को हम छोड़ करके पॉजिटिविटी को अपनाएं, तो हमारा मन स्वाभाविक रीति शांति में रहेगा। पॉजिटिव बन सकते हैं। ये जितनी बातें हमने एडजस्ट करने लिए बोला है वो सभी संभव तो है ना। पॉजिटिव बन सकते हैं, जरा हाथ उठावे तो बन सकते हैं। और पॉजिटिव बनने से शांति प्राप्त हो सकती है तो जरा हाथ उठाओ। कितना इजी है। फिर इस समय की एक बहुत जबरदस्त आदत स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली है, वो है पास्ट का चिंतन करते रहना। और पास्ट में भी खास करके जो लाइफ की फेलियर है, जो विरोधी हैं, जो दुख देने वाली बातें बनी हैं, उसको खास याद करना है ना। ये तो सबको अभ्यास होगा, होगा ना, मैं हाथ ऊपर नहीं करवाऊंगी। पर पास्ट का चिंतन करना, और पास्ट का खाली चिंतन करना इतना नहीं, पास्ट की बातों को चिंतन करने से पहले तो हमारे अंदर में हर्ट पैदा होता है, हमारा दिल टूट जाता है, फिर वो हर्ट होल्ड होता जाता है। हर्ट को क्या करते, होल्ड करते जाते। जितना ज्यादा बारी आप याद करेंगे तो वो इकट्ठा होता जाता है, हर्ट को होल्ड करते हैं। अब आपको मालूम हो कि मेडिकल साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि मोर देन 80% डिसीजेज आर साइकोसोमेटिक। मन की शरीर पर जो असर होती है उससे बीमारियां होती हैं। तो ये पास्ट का चिंतन भूल सकता है, जो कहते पास्ट का चिंतन भूल सकता है वो हाथ उठाए। अच्छा, भूल तो सकता है, भूलता है नहीं है वो अलग बात है हमारे से, लेकिन भूल सकता है। एक माता मेरे पास आई, महिला माता, 50 साल की उम्र होगी। वो 1.5 घंटे तक उसकी कथा कहानी कहती रही, मैंने शांति से सुनी। कोई इलाज नहीं था, उसको सुनने वाला कोई चाहिए। फिर सुनकर के मैंने प्रेम से समझा करके उसको बताया कि बहन, ये सब तुम्हारे से हुआ है, ठीक है, मेरे से ये होता तो मेरे को भी दुख होता, लेकिन अब इसका इलाज एक है कि तुम ये सब को क्षमा दे दो, तुम तुम्हारे से जिन्होंने बिगाड़ा है उन सबको माफी दे दो और तुम पास्ट को भूल जाओ। उसने क्या कहा होगा? बोला, दस दस जन्म तक भी मैं नहीं भूलूंगी। अब उसको अच्छे होने का कोई इलाज है? उनको कोई भी अच्छा कर सकता है? उनका डिप्रेशन, उनकी बीमारियां कोई दूर नहीं कर सकता है? वास्तव में लाइफ न पास्ट के लिए है न फ्यूचर के लिए है। लाइफ इज नाउ। हमेशा प्रेजेंट में रहना, वर्तमान में रहना। और प्रेजेंट में कैसे रहना? विद द फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं यहां हूं, मुझे यहां ही रहना है। ऐसा नहीं मैं बैठी यहां हूं परंतु मेरा मन तो कहां बहुत दूर चला गया है, किसी पर्सन के पास, सो एंड सो। तो आप यहां नहीं हो। पास्ट चला गया, अब वो गया हुआ वापस आने वाला नहीं है। पास्ट को सोचने में हम अपना प्रेजेंट टाइम बिगाड़ते हैं। समय कितनी वैल्यूएबल चीज है, जो समय गया वो वापस तो आने वाला नहीं है। ये समय को पैसे से खरीदा नहीं जाता है, समय को लंबा किया नहीं जाता है। जो सेकंड गई 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 गई। तो मेरे जीवन की एक एक सेकंड मूल्यवान है और भविष्य का तो मुझे मालूम नहीं है। अभी मैं बैठे बैठे ठप हो गई, काम बुरा। मैं 5 साल के बाद का सोचूं, अरे ठीक है, 5 साल के बाद, 5 साल पर हो जाएगा। एक प्लानिंग के तरीके से आप अपनी बुद्धि को लंबी करके सोचते वो अलग चीज है, लेकिन वो 5 साल के बाद जो बात होने वाली है वो अभी नहीं होगी। इसलिए मुझे उसको अभी नहीं सोचना है, मुझे वर्तमान को जस्टिफाई करना है। इसलिए हर समय याद रहे कि मेरे जीवन की ये घड़ी बहुत मूल्यवान है, ये इवेंट बहुत मूल्यवान है, मेरे सामने जो व्यक्ति है वो बहुत मूल्यवान है। प्रेजेंट में प्रेजेंस माइंड रखने से हम जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो पास्ट की बातें, व्यर्थ बातें सोचना, ये भी मन को अशांत करना। ये जितने रास्ते हमने अपनाए वो ऐसे ही अपनाए जिससे हमारा मन अशांत हो। हमने अपनी शांति को अपने आप रिस्क में डाला। तो पास्ट को न सोचते हुए प्रेजेंट में रहना है। कितनी बातें सुनी, कितनी बातें सुनी। याद रहेगा तो फायदा मिलेगा, अगर याद ही नहीं रहेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर भूल जाए, अपना आईडी भूल जाए, तो क्या होगा? चलेगा? नहीं चलेगा। तो अभी मैं आत्मा अपनी आइडेंटिटी को पहचान लूं, मैं क्या हूं। हम अपने आप को पहचान लेंगे और वो पहचान के स्वरूप में रहेंगे तो हमारी पूर्ण शांति बनी रहेगी और आप बहुत एफिशिएंट काम कर सकेंगे। 4 से 5 घंटे की नींद में आप बाकी का पूरा समय काम कर सकेंगे। विथ रिलैक्स मूड एंड रिफ्रेश्ड, हम चाहते हैं हमारे जीवन में हमें ये अचीवमेंट लानी है, जो कहते हैं हाँ ये होना चाहिए, हमें करना है, वो हाथ उठाएं, हाथ उठाएं प्लीज। थैंक यू। तो ये जो 5 बातें कही है वो तो पहले हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, हाँ, जिसको निकालना है निकालना है, अडॉप्ट करनी है अडॉप्ट करना है। मैं फिर से एक बार बोल जाती हूँ, आप अपने मन की डायरी में अच्छी तरह से लिख लीजिए। नंबर 1, नॉट टू रिएक्ट, बट टू एक्सेप्ट। नंबर 2, नॉट टू रिजेक्ट, बट टू सिलेक्ट। नंबर 3, नॉट टू ब्लेम, बट गिव ब्लेसिंग्स। नंबर 4, नो पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी, to be positive. Number 5, not to think about past, but remain in present, and थोड़ा कुछ और plus करना है तो look forward, आगे देखो, remain present and look forward, but don't think about past. अब ये एक सामान्य लेवल का परिवर्तन हमें अपने में लाना है, पर उसको हम कर सके उसके लिए मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? सिंपली टू रिमेंबर, मेडिटेट, कोई एक बात को याद करना, उसको फोकस करना, उसको मेडिटेशन बोला जाता है। अब ये जो आत्मा के अंदर एक शक्ति है, स्मृति शक्ति, शरीर और आत्मा दोनों के होने से ये मनुष्य जीवन है। आत्मा निकल गई तो लाइफ का एंड हो गया। ये ह्यूमन बॉडी के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए ब्रीदिंग है, श्वासोश्वास, चलते ही रहना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए श्वासोश्वास। अगर श्वासोश्वास बंद हो गया तो बॉडी फेल हो जाएगी। आत्मा के लिए लाइफ सस्टेनिंग पॉइंट क्या है? मेमोरी, स्मृति। अगर हमारी स्मृति शक्ति चली जाए, हमारा मेमोरी पावर चला जाए, क्या हो जाएंगे? पागल हो जाएंगे? घर भूल जाए, अपना खुद का इंट्रोडक्शन भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, तो क्या होगा? लाइफ सस्टेन होगी? तो ये जो मेमोरी है ना, स्मृति शक्ति, ये स्मृति का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप 3 दिन के लिए सुबह को रोज शिविर में जाएंगे ने तो इसमें आपको ये सिखाएंगे, मैं इस एस्पेक्ट को अभी नहीं टच करती हूं। पर ये जो स्मृति है वो स्मृति का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर आपकी स्मृति पर प्रभाव आता है तो उसका प्रभाव कहां कहां काम करता है। जैसी आपकी स्मृति होती है वैसी आपकी स्थिति बनती है। समझो आपको इस समय बुद्धि में कोई बात का टेंशन है तो आप चिंता में रहेंगे, परंतु आपको अचानक से कोई मैसेज मिल जाए कि आपकी लॉटरी लग गई है या आपको प्रमोशन मिल गया है, कोई भी गुड न्यूज आपकी बुद्धि को मिल जाए तो क्या होगा, आप खुश हो जाएंगे। जैसी आपकी स्मृति वैसी आपकी स्थिति, जैसी आपकी स्मृति वैसी शक्ति। समझो आपको समाचार मिला कि आपको प्रमोशन मिल गया तो आपके अंदर ताकत एनर्जी आ जाएगी, लेकिन आपको समाचार मिल गया कि आपका सो एंड सो फ्रेंड वो एक्सीडेंट में अब इतना इंजर्ड हुआ कि अब वो स्वभाव नहीं करेगा, ये मैसेज बुद्धि को मिला, क्या होगा, शक्ति चली जाएगी, एनर्जी चली जाएगी। स्मृति की इफेक्ट शक्ति पर या न शक्ति पर। फिर जैसी आपकी स्मृति ऐसा आपका स्टमक। अगर कोई बात आपके मन में चिंता की है, कुछ समाधान नहीं आ रहा है, आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको हजम नहीं हो रहा है, इसमें से धीरे धीरे अल्सर एसिडिटी जितनी पेट की बीमारी है उसका कारण क्या है, चिंता। आपकी स्मृति में कोई टेंशन है, आपको नींद नहीं आएगी। आपकी स्मृति में कोई टेंशन है तो आपका फेस बोलेगा, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा चाड़ी खाए। तो हमारी टोटल पर्सनालिटी वो हमारी स्मृति के आधार से बनती है। आप क्या सोचते हो उसके आधार से, आप क्या स्मृति में रखते हो उसके आधार से आपकी स्थिति, शक्ति, स्वास्थ्य, स्वरूप, आइडेंटिटी, बिहेवियर सबको इफेक्ट करता है। तो हमें स्मृति को एजुकेट करना पड़ेगा। स्मृति का एजुकेशन वो है मेडिटेशन। तो अब स्मृति को क्या एजुकेशन देना है, सबसे पहले कि मैं शरीर नहीं हूं, जो गलत समझ लिया है ना वो सूरदास या तुलसीदास किसकी कहानी में आता है कि वो इतना मोहांध हो गया था कि वो जो लटकता हुआ सांप था वो उसको रस्सा लगा और वो पकड़ के चढ़ने लगा था। हाँ, तुलसीदास। हम मोहांध हो गए हैं, हम शरीर में इतने अंधे हो गए हैं कि हम शरीर नहीं हैं, फिर भी हम अपने को शरीर समझने लगे हैं, हम तो आत्मा हैं। और आज आत्मा का लेसन हुआ सुबह को, जो गए थे शिविर में हाथ उठाए गए थे, कौन सा लेसन हुआ, परमात्मा का हुआ आत्मा का, आत्मा का। मैं आत्मा हूं, हम वो भूल करके शरीर समझने लगे थे, इसलिए हमारी स्मृति भंग हुई, हम अपने आप को गलत समझने लगे। अभी स्मृति से हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनेगी। मेडिटेशन में हमें क्या करना है, हम जो हैं हमें अपने स्वरूप को महसूस करना है कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं, मेरे गुण कौन से हैं, मेरी विशेषता कौन सी है, मेरी शक्ति कौन सी है। तो अभी थोड़ा समय हम शांति के स्वरूप के मेडिटेशन के ऊपर चिंतन करेंगे। ऐसे हर गुण के ऊपर आप चिंतन कर सकते हैं। मैं आपको अपने जीवन की बात सुनाती हूं। 18 साल की उम्र में मैं ये संस्था में आई, उसके पहले कि मेरी जीवन में मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्से का अवगुण था, बहुत ज्यादा क्रोध था, बहुत ज्यादा। और मैं हर दिन साथ पुरुषार्थ करती थी कि भगवान मेरा ये गुस्सा तो कोई छुड़ावे है। चौदह से 18 साल की उम्र, 5 साल तक मैंने बहुत मेहनत की, विवेकानंद का राजयोगा किया, रोज सत्यनारायण की कथा सुनी, गीता का पाठ किया, शिव महिमन स्त्रोत किया, बहुत कुछ किया, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ। जैसे ही इस विश्वविद्यालय में आई और आत्मा का पाठ पढ़ा और उसके अंदर जब ये बात सुनी कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और मेरा घर भी तो शांति का धाम है और मेरे पिता शांति के सागर हैं, तो ये मेरे में क्रोध आया कहां से? तो मैं पार्टी और पेन लेकर के एक स्टूडेंट्स की तरह अभ्यास करने बैठ गई। मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांति के सागर की संतान हूं, मुझे शांति बहुत अच्छी लगती है, अब मुझे सब कुछ शांति से करना है। ऐसे करते करते बस 2-3 दिन के अंदर मेरे में बदलाव आ गया, मेरे में शांति अपने आप आने लगी। और जो मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति, वो जैसे अंदर से प्रकट होने लगा। तब से लेकर के मुझे ये शांति का अभ्यास और अनुभव इतना प्रिय है कि कोई भी मुझे मिलने के लिए आते हैं या मैं किससे मिलने के लिए जाती हूं, तो मैं कहती हूं पहले हम 2 मिनट साइलेंस मेडिटेशन करेंगे, फिर हमारी बातचीत करेंगे। उस बात ने मुझे इतना फायदा कराया है जीवन में जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूं। इस संस्था में आने के पहले मैं बीमार ही रहती थी, मेरा रोग का इलाज किसी पथी में नहीं था, न एलोपैथी में, न होम्योपैथी में, न आयु, कोई पथी में नहीं था। और इस ईश्वरीय ज्ञान ने मुझे नया जीवन दिया, और मुझे तो दिया पर मेरे द्वारा कितनों का जीवन बना। तो अपने कल्याण के लिए और अपने कल्याण के द्वारा दूसरों के कल्याण के लिए हम इस शांति की शक्ति को अपनी शक्ति बना लें। शांति की शक्ति ऐसी है जिसके पीछे सारी शक्तियां अपने आप आती हैं। जो शांत चित्त व्यक्ति होगा उसमें विवेक होगा, उनमें सम्मान की भावना होगी, वो धैर्यवत होगा, वो नम्रचित होगा। शांति सर्व गुणों का खजाना है। आप यहां से ये जड़ी बुट्टी अवश्य लेकर के जाए, ये एक सचमुच में मिरेकल आपके जीवन में बनेगा, आपका जीवन एक जादू बन जाएगा। चलिए रिलैक्स हो जाए, हम मेडिटेशन की ओर जाए। उसके पहला किसी को कुछ पूछना है इस विषय से, हाँ बोलिए, माइक देना भैया। एक ही है शांति की शक्ति, उसको साइलेंस, पीस इंग्लिश में दो शब्द बोलते, हिंदी में केवल शांति ही कहते हैं, तो एक ही बात है। और हाँ जी बोलिए भैया।
ओम शांति। आप तो यहाँ पर रहते हैं लंबे समय से, तो आप सीख गए, हम यहाँ से सीख के जाएंगे फिर घर जाएंगे, तो हमारी प्रैक्टिस कैसे बनी रहेगी? हम तो वही हो जाएंगे जाके।
नहीं, इसलिए आप अपनी दिनचर्या के अंदर इसको सेट कर लो। हर घंटे में एक मिनट मेडिटेशन करना है, किसी से बात करने के पहले पोज दे करके एक मिनट मेडिटेशन करना है। जैसे पानी पीने की आदत डाल दी है, छोटे मोटे और काम की आदत डाल दी है, ने मोबाइल देखना जरूरी समझते हो, वैसे मैं आत्मा पीसफुल हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ये अपने को बार बार कमांड देना पड़ेगा, तो हो जाएगा।
थैंक यू।
हाँ जी।
ओम शांति दीदी। दीदी, ऑफिस में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। बीइंग समटाइम्स आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजिशन में हो, बट समटाइम्स एज अ सबॉर्डिनेट आपको दूसरों की गलती की वजह से आपका बॉस डांटता है, तो उस वजह से आपको अपने आसपास बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। और कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब आपको क्रोध करना पड़ता है, क्योंकि शायद जो और छोटे लोग हैं वो इतना सीरियसली उस बात को लेते नहीं हैं, या हो सकता है और बैरियर्स की वजह से, जैसे कभी कभी जेंडर बैरियर्स फीमेल एम्प्लॉई समझ के, या आपके सॉफ्ट बोलने की वजह से, आपके साइलेंस रहने की वजह से, आपके आपको आपकी बात को उतना सीरियसली नहीं लेते और सोचते हैं कि नहीं, जो शायद डांट रहा है पहले उसका सुनेंगे, इसका तो चलता है, ये तो कुछ नहीं बोलेगी। तो ऐसे सिचुएशंस में थोड़ा सा हैंडल करना टफ हो जाता है अपनी वैल्यूज को लेके।
मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको सुनाऊं। हमारे पास एक बहन आती है, उसका हस्बैंड एक दिन मुझे मिलने आया। वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। मैंने उनको कहा, भैया आप यहाँ 7 दिन के लिए आओ और अपना राजयोग सीखो। बोला, बहन जी हमको टाइम ही नहीं मिलता है, और हम राजयोग करेंगे तो पैसा कौन कमाएगा हमारे बदले? मैंने कहा, पैसा तो साथ में नहीं आने वाला है आपके, आपके जीवन में शांति साथ में आएगी। बोला, हम शांति से कुछ काम नहीं चलता है, मैं तो फैक्ट्री में जाता हूँ, तो जाऊँगा तो पहले ही प्यून को 2-4 थप्पड़ लगा दूंगा, फिर अंदर जाऊँगा तो जो मिलेंगे उसको थोड़ा 2-4 सवाल पूछ लूँगा, ऑफिस में जाके चेयर पर बैठूँगा और जो सबऑर्डिनेट आएंगे तो उनसे थोड़ा पूछ लूँगा, ये काम हुआ नहीं हुआ, वो हुआ फलाना। तो बहन जी हमारा तो ये माहौल है। मैंने कहा, अच्छा आप तो बहुत अच्छा काम करते हो। बोला, क्यों ऐसे बोलते हो? मैंने कहा, नहीं यही आपको करना पड़ेगा तो आपकी जीवन क्या होगी। मैंने कहा, आप है ना 1 सप्ताह के लिए मैं कहूँ ऐसा करो। बोला, क्या करना है? मैंने कहा, आप कल जैसे ही फैक्ट्री पर जाओ ने तो वो प्यून बैठा हो उसको पूछना, बेटा कैसे हो, तुम्हारा परिवार ठीक है, तुम मजे में हो, ऐसा पूछना। फिर अंदर जाओ तो मुस्कुराना, सभी के साथ मुस्कुराना, किसी से अच्छी बात कर लेना, और जो आपका राइट हैंड है जिससे आप सारा काम लेते हैं, उसको आप थोड़ा अप्रिशिएट कर लेना कि आप बहुत अच्छा करते हो और बिकॉज ऑफ यू ये मेरा बिजनेस है, ऐसा थोड़ा कर सकेंगे? बोला अभी मुश्किल तो बहुत होगा पर आप बोलते हो तो मैं करूंगा। तो उसने सिंसियरली किया और तीसरे दिन पर वो मेरे को मिलने आया। बोला बहन मेरा तो सारा माहौल बदल गया, अब लोग मेरे साथ प्यार से मिलते हैं, मुझे किसी को कुछ कहने की दरकार नहीं। आप अपने को कोई भी पोस्ट पोजीशन वाला मत समझो, आप अपने को मेल फीमेल मत समझो, आप अपने को एक आत्मा हो। जो यहां आप पढ़ के जाएंगे ने तो आप अपने को एक आत्मा समझो, एक श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा की संतान समझो और आप अपनी डिविनिटी में रहो। तो कैसे भी लोग झुकेंगे नहीं तो बदल तो जाएंगे ही, आपका सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपनी वैल्यूज में रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा आपको प्रयत्न तो करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ता है। अच्छा, और कोई पूछना चाहते?
ओम शांति दीदी, माई क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रिएक्शन। जैसे आपने बोला कि कोई भी सिचुएशन में यू डोंट हैव टू रिएक्ट, आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी कि आपने रिएक्ट नहीं किया बट द पर्सन रियलाइज्ड हिमसेल्फ के नहीं मैंने गलत किया एंड आपसे खुद माफी मांगने आया। बट बहुत बार बाहर आई मीन देयर आर पीपल हु डोंट रियलाइज दिस। आप चाहे जितना भी चुप रहें, जितना भी आप रिएक्ट करने की ना कोशिश करें, दे स्टार्ट थिंकिंग दैट दे कैन ओवर पावर यू एंड दे स्टार्ट ओवर पावरिंग यू एज वेल। इट्स नॉट दैट दे थिंक बट दे एक्चुअली डू इट इवन आफ्टर लॉट ऑफ ट्राई। सो इज देयर एनी लाइक you know time limit that we have to kind of give to that person? Lekin wo samajh hi nahi rahe hain anyhow, but you can't get rid of them, either they are your family, either they are at your work. So to us situation mein what we can do? Tab aap chahte nahi ho ki aap react karo, lekin wo samajhne ki jagah ki yes this person is not reacting, lekin usse zyada aur they are trying to overpower and do things.
Pehle aap बन के तो दिखाओ, पहले आपको शांति की मूर्त बनना पड़े, आपको रियली में वो एम्बॉडीमेंट बनना पड़े। अगर आप बाहर से चुप रहते हो लेकिन अंदर से आपका इतना ही वाइब्रेशन नेगेटिविटी का है या हेट का है तो काम नहीं करेगा। आपको प्योर पावरफुल बनना पड़ेगा, अपना इंटेंशन एकदम क्लियर करना पड़ेगा। फिर भी नहीं होता है तो वो बेचारे डिसीज पर्सन हैं, उनको कुदरत ने इतनी ही एफिशिएंसी दी है तो आप उसके ऊपर दया करो। जैसे कोई के पास खाना नहीं है तो आप खाना देते हो, तो आप अपनी गुड फीलिंग उसके प्रति रखो कि इनमें वो शक्ति आ जाएगी, परमात्मा इनको ये शक्ति मिले, ऐसी शुभ भावना करो। ठीक है, मजबूत आप बनो, आप मजबूत बनेंगे तो उसको मजबूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए 5 मिनट के लिए।
दीदी एक लास्ट क्वेश्चन,
मेरा टाइम ओवर हो जाएगा।
ओके नो प्रॉब्लम,
बोलिए।
जैसे आपने बताया कि हमें पास्ट में नहीं रहना है और फ्यूचर में भी नहीं रहना है, प्रेजेंट में रहना है, तो अगर प्रेजेंट में ही ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि जैसे हम हमारा पीसफुल नेचर वहां नहीं कर पाए और रिएक्ट करना पड़ रहा है वहां पे, तो क्या करें?
तो प्रैक्टिस ज्यादा करो।
पर वही टाइम पे आता है, यानी जैसे हम 2 दिन शांत हो रहे हैं, फ्यूचर का भी हम नहीं सोच रहे और प्रेजेंट में ही ऐसी सिचुएशन आ जा रही है।
फाइंड अ वे और मेक अ वे, रास्ता ढूंढ निकालो या रास्ता बना लो, कुछ तो करना पड़ेगा, अटक तो नहीं जाएंगे। चलिए एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, और ये शरीर को ऐसे ही छोड़ दे जैसे जूते बाहर उतार दिए हो, एकदम रिलैक्स होकर के बैठे, एकदम रिलैक्स। जूते पहने हो तो निकाल दो, यहां पहने हो तो भी निकाल दो। और अपना टोटल फोकस मस्तिष्क में दो भ्रुकुटी के बीच में रखें और एक बहुत सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट मैं हूं। मैं आंख नहीं, मैं कान नहीं, ये सारे शरीर के ऑर्गन्स हैं। मैं पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी हूं और मैं आत्मा अब अपने स्वरूप के चिंतन की ओर जाती हूं और वो चिंतन हमारे में परमानेंट बनने से वो फिर इस ऑर्गन्स के द्वारा बाहर आएगा। हमारे देखने में शांति, बोलने में शांति, सुनने में शांति, व्यवहार में शांति, हम शांति के अवतार बन जाएंगे। ओम शांति। महसूस कीजिए मैं एक दिव्य प्रकाशमय ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांत स्वरूप हूं। शांत स्वरूप। शांति। मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति। मुझ आत्मा की वास्तविकता है। मुझे शांति बहुत प्रिय है। मैं शांति के सागर, परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप हूं। मेरा निजी धाम चांद तारों से पार शांति का धाम है। मैं आत्मा शांति से चिंतन करती हूं। शांति शांति से बातचीत करते हो। शांति का व्यवहार करती हूँ। शांति के सागर पिता की संतान, मैं आत्मा हूँ। शांति दूत हूँ। शांति का अवतार हूँ। शांति का फरिश्ता, परमात्मा से प्राप्त शांति, मुझ आत्मा के द्वारा मेरे आसपास और पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। मैं मंगल कामना करती हूँ। विश्व की सर्व आत्माओं को शांति प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, खुशी प्राप्त। ओम शांति, ओम शांति, ओम